तो आज जो हम विचार करेंगे, आज जो अध्ययन करेंगे, वो प्रेत काम उसके 24 अध्याय में करेंगे। शायद ये आज अध्याय के बाद हम 2-3 अध्याय रोक देंगे, क्योंकि अगले इतवार से हम क्रिसमस से जो बड़ा दिन आ रहा है उसकी सीरीज पे हम जाएंगे, जो नए नियम से सुसमाचार से होगी। लेकिन आज 24 अध्याय, जब 24 अध्याय के तो हम ये देखते हैं कैसेरिया में फेलिक्स के सामने पौलुस का उपस्थित होना। फेलिक्स उस समय क्या नाम से राजपाल है, और जब हम थोड़ा सा और इस बात को देखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोमी शासन है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 62 साल पहले रोमी शासन आरंभ हो गया था, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म रोमी शासन में, और प्रभु यीशु मसीह रोमी शासन में उसी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। अभी रोमी शासन चल रहा है और कलीसिया स्थापना विभिन्न स्थानों पर हो रही है, लेकिन उन रोमी शासन में यहूदी भी हैं, और यहूदियों को रोमी शासन में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है कि वो अपनी व्यवस्था के अनुसार आराधना में जाएं, ये उनके पास स्वतंत्रता थी। बीच में कुछ समय बहुत शक्ति आई, उसके 380 के बाद फिर दोबारा उसमें स्वतंत्रता मिली। जब हम कलीसिया के इतिहास को अध्ययन करते तो हमें मालूम चलता है किस प्रकार से, और शुरू से लोगों ने, बहुत लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया है। पर जो आज हम स्थल देखना चाह रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्थल की परिस्थिति है, ये जो महायज्ञ है वो रोमी शासन का है, और उसके सामने ला करके कुछ केस प्रस्तुत किया जा रहा है। किस प्रकार से वो केस प्रस्तुत होता है पौलुस के बारे में, और किस प्रकार से पौलुस का प्रत्युत्तर देता है, और किस प्रकार से तीसरा खंड है राजपाल जो है किस प्रकार से उसका न्याय करता है, तो तीन चीजें इसमें, तीन बातें। पहली बात, 23 अध्याय के पहले पद से लेकर के 9 पद तक पौलुस के विरुद्ध दोषारोपण है। एक वकील है, वकील नाम नया नहीं है, वकील नाम पुराने नियम से है। अगर आप नहमा की पुस्तक में जाएंगे तो आपको वहां मालूम चलेगा, वहां भी वकीलों ने नहमा को फंसाने के लिए झूठ बोला था। तो आज नई चीज नहीं है, जो कि जो हम देख रहे हैं वो नई बातें नहीं है, वो पुराने समय से चले आ रहे हैं उस समय भी। तो यहां पर भी वकील को देखेंगे, ठीक है, वकील है। उसके बाद तो पहले पद से लेकर 9 पद तक, 24 अध्याय का पहले पद से लेकर 9 पद तक हम उसको देख रहे हैं। दूसरा बात, 24 अध्याय के 10 पद से लेकर के 21 पद तक पौलुस द्वारा उस स्थिति का स्पष्टीकरण है, जो उस पर दोष लगाया जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है उसका वो स्पष्टीकरण दे रहा है। अभी केवल वो इस समय यरूशलेम में केवल 12 दिन के लिए, 12 दिन हुए था आए हुए, अभी वो बाहर था, अपने मिशनरी यात्रा में था, 3 मिशनरी सुसमाचार यात्रा वापस करके पूरा करके वो वापस लौटा है। यद्यपि अंताकिया में लौटते थे, लेकिन अंताकिया जो मुख्य नगर था, अंताकिया के बाद यरूशलेम है, तो पौलुस ने कहा मैं अंताकिया नहीं लेकिन अब यरूशलेम में जाऊंगा। पिछली बार मैंने बताया था कि वो बहुत बार यरूशलेम जाना चाहता था, क्योंकि यरूशलेम उसके हृदय में बसा हुआ था, क्योंकि उसने वहीं पर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया था, उसने वहीं पर कलीसिया का विरोध भी किया था, और वहीं पर कलीसिया के सुसमाचार का कार्य भी किया था। तो हमने बहुत सारी बातों को पिछले दिनों में देख चुके, तो अब जब हम देख रहे हैं कि अपोलोस वहीं पर केवल 12 दिन हुए इसमें, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा दोषारोपण लगाया गया उन साथ चुके। तो पहले पद से 9 पद तक पौलुस के विरुद्ध दोषारोपण है, 10 पद से लेकर 21 पद तक है पौलुस द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण है, 24 अध्याय के 22 पद से लेकर 27 पद तक पौलुस प्रति राजपाल का निर्णय, राजपाल गवर्नर किस प्रकार से पौलुस के प्रति निर्णय देता है उसको हम देखेंगे। तो जैसे मैंने परिस्थिति बताया, परिस्थिति क्या है, परिस्थिति रोमी राज है, रोमी शासन में यहूदियों को छूट मिली हुई है कि वो व्यवस्था का पालन करें, आराधनालय बने हुए हैं, आराधनालय में जाएं और आराधनालय में जो अपनी विधि उसको पूरा कर सके, ठीक है, ये सर तो न। और इसीलिए तभी वही समय था कि यहूदियों ने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाया था, पकड़वाया था, और पिलातुस भी उस समय राजपाल था, उसी ने उस पर दोष लगाकर उसको करा था, पिलातुस रोमी शासन, यहूदी पकड़वा रहे हैं रोमी शासन, रोमी शासन कुछ नहीं कर रहा, रोमियों ने नहीं पकड़वाया, ये ध्यान दीजिएगा, उसमें रोमियों, रोमन इसी से आगे चल के रोमन कैथलिक बना, इसी से आगे चल के रोमन कैथलिक निकला था आगे जब हम इतिहास को पढ़ते, तो ये वहां से शुरू हुआ। पर उनका इसमें यीशु को पकड़वाने में कोई, लेकिन उसी की जाति के लोग, यहूदी जाति के लोग, यहूदी लोग तो विरोध करके उसको पकड़वाना चाहे, और उन्होंने उसका निर्णय लिया, रोमी शासकों ने उनका निर्णय, क्योंकि जब भी कुछ होता था दो चीज होती थी, उनका निर्णय पहले यहूदी के जो याजक होते थे और खास तौर से उनसे क्या होता, और वहां पर एक समिति बनी हुई थी, समिति में 70 लोग होते थे, और उस 70 लोग में एक और व्यक्ति होता था जो महायाजक होता था, हाई प्रिस्ट महायाजक, वो महायाजक 71 लोग मिल करके बहुत सारी चीजों को अपनी रीति विधियों का संचालन करते थे, और उनके यहां संतान नियम ठहराते थे और उनका लोग पालन करते थे, ये उसकी उस समय की परिस्थिति थी। अब ऐसे समय में क्या हो रहा है, जब पौलुस को पर दोष लगाया गया, तो पौलुस पर पिछली बार देख चुके हैं महिमा राजपाल फेलिक्स को, फेलिक्स राजा राजपाल है उस समय। अब 24 अध्याय से पहला पद पढ़ रहा हूं, पहला दूसरा पद, 5 दिन के पश्चात ये लोग लेकर आ गए फेलिक्स के पास, और जब फेलिक्स के पास लाए तो फेलिक्स के पास ला करके उससे कहा कि भाई ये गड़बड़ कर रहा है, पौलुस गड़बड़ कर रहा है। तो पौलुस ने कहा कि ठीक है, इसके बारे में कोई दोष लगाने वाला तो हो, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने एक वकील को रखा है, हमने एक वकील को रखा है, उस वकील का नाम तिरतुलुस है, तिरतुलुस, अभी हम पढ़ेंगे पहले पद में, तिरतुलुस, तिरतुलुस जो वकील है उस समय वो बहुत विद्वान वकील माना जाता है, और कई सारे केसों को, जैसे आज भी भारत में बहुत सारे विद्वान हैं, वकील हैं, और उनको लोग जाते हैं बड़े बड़े केस के लिए, वो बहुत पैसा लेते भी हैं, और ये भी इसी तरह से एक प्रसिद्ध वकील था, और इन लोगों ने उसको, और उस वकील को आने में 5 दिन लगे, वहां से आने में, पैलेस के आने में 5 दिन लगे, तो 5 दिन तक क्या करा गया, अब देखिए 23 अध्याय के 33 पद से मैं पढ़ रहा हूं, वहां से शुरू करूं तो समझेंगे आप लोग। जब घुड़सवार कैसरिया पहुंचे तो उन्होंने राजपाल को पत्र दिया कि पौलुस को भी उसके सामने उपस्थित किया। पत्र पढ़ने के पश्चात उसने, राजपाल ने पूछा कि तू किस प्रांत का है, और ये जानकर कि ये किल्किया का है, निवासी है, पौलुस ने बताया था मैं किल्किया का मेरा जन्म हुआ है, निवासी हूँ, उसने कहा जब तक दोष लगाने वाले भी आ जाएंगे तब मैं तेरी सुनवाई करूंगा, अभी मैं तेरे को नहीं सुनूंगा, जरूर है जो दोष लगाने वाले उपस्थित हो जाए तब मैं सुनूंगा कि वास्तविक क्या है। ये बहुत अच्छी बात है, सामने सुना जाए कि वास्तविकता क्या है, पीठ पीछे बहुत सारी बातों को हम कर लेते हैं, लेकिन सामने सुना जाए वास्तविकता क्या है। और तब उसने कहा, फेलिक्स ने कहा, ये सिद्धांत है बाइबल का, बाइबल का सिद्धांत यही है, ठीक है। तब उसने कहा, तब पौलुस को बुलाया गया, उसने कहा 35 पद, उसने कहा जब तुम पर दोष लगाने वाला आ जाएगा तब मैं सुनाई करूंगा, और उसने आदेश दिया कि हेरोदेस के राजभवन की सुरक्षा में उसको रखा जाए। अब पौलुस 5 दिन तक राजभवन की सुरक्षा में रखा गया, हेरोदेस राजा उसको 5 दिन की सुरक्षा में। अब 5 दिन बाद ये वकील आता है, 24 अध्याय के पहले पद से, 5 दिन के पश्चात महाजक हनना कुछ प्राचीनों तथा तिरतुलुस, अब ये महाजक कहां का महाजक है, ये पुराना बहुत बता रहे, और ये यहूदियों का वहां जो उनको देखता, मैंने कहा था कि बताया था कि 70 लोग होते थे, लेकिन महायाजक मुख्य होता था, क्योंकि महायाजक के पास अधिकार होता था कि व्यवस्था के अनुसार कुछ नियमों को बताए और उसके अनुसार वो लोग सुनवाई कर सके कि उन्होंने किस प्रकार से व्यवस्था को तोड़ा। तो ये महायाजक भी वहां पर कुछ प्राचीन को तिरतुलुस नामक एक वकील के साथ लेकर आए। अब ये वकील ये तो महायाजक आया है, कुछ प्राचीन है, कुछ और लोग हैं जो उनके अगुवे हैं, यहूदियों के अगुवे हैं, उस 70 में से कुछ लोग हैं, ये लेकर के उनके पास आए और उन्होंने राजपाल के सम्मुख पौलुस के विरुद्ध अभियोग लगाया। जब पौलुस को बुलाया गया तो तिरतुलुस उस पर आरोप लगाते हुए राजपाल से कहने लगा, अब यहां पर वकालत हो गई, ठीक है। फेलिक्स जो क्या नाम से राजपाल है वो बैठा हुआ है, हनना महायाजक है, उसके साथ कुछ और लोग हैं, पौलुस खड़ा हुआ है, और पद जैसे आप कचहरी में देखते हैं, और उसके बाद अब तिरतुलुस जो की वकील है वो खड़ा हुआ है, अब वो इसके प्रति पौलुस के प्रति अभियोग या दोष लगा रहा है कि पौलुस ने क्या किया। तो पहले इन पदों में हम उन बातों को देखते हैं जो उस पर दोष लगाए जा रहे हैं, और क्या कहा, महामहिम फेलिक्स तेरे कारण हमारे देश में बड़ी शांति है, राजपाल, और ये सच है, ये सच बात थी कि रोमी शासन में एक बात मुख्य थी कि रोमी शासन किसी भी प्रकार से अपने राज में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में अशांति उत्पन्न होते नहीं देखना चाहते, ये बात। तो उस समय भी वो धारा थी शांति भंग करने की, उस समय वो धारा थी। आज हमारे देश में भी जब दवा 144 कहते थे यही है कि 5 से लोग ज्यादा ना खड़े हो और शांति। हमें याद है जब हम एक बार तानपुर गए, हमें पुलिस वाले पकड़ ले गए तो हमें हमसे लिखवाया गया 6 महीने तक आप इस गांव में नहीं आएंगे, और वही धारा थी कि आप यहाँ पर शांति भंग कर रहे हैं, है ना, प्रचार करना का मतलब लोगों के लिए। तो यही धारा लगा दी, ये उस समय से चली आ रही है, नई चीजें नहीं है। जब हम देखते हैं वचन को, बहुत सारी चीज हमारे सामने आते हैं। तो जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और आज की पसंद को देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज नई नहीं लगती, और बल्कि मेरे लिए प्रोत्साहन का काम मिलती है। अब क्या हुआ, शांति है। और तेरे दूरदृष्टा के फलस्वरूप राजा वो क्या कर रहे हैं, फेलिक्स को अप्रिशिएट कर, अच्छी बात है कि फलस्वरूप देश के अनेक सुधार किए जा रहे हैं। हम ये बात हर प्रकार से और हर जगह धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं। हम फेलिक्स इस बात को स्वीकार करते हैं, तेरे शासन में सारी बातें, तू विकास कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उसके प्रति हम धन्यवाद देते हैं। आज की परिस्थिति को आप देख रहे हैं जो कुछ भी है। अब मैं तेरा और अधिक समय नष्ट न करके तुझसे निवेदन करता हूँ कि कृपा करके हमें थोड़ी सी सुनवाई का अवसर प्रदान कर। उसको अप्रिशिएट किया, अब ये कह रहा है हम निवेदन करें थोड़ा समय दे दें, और मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये अशांति को जो तेरे राज में शांति है इसको कौन बंद कर रहा, इस शांति में कौन बाधा डाल रहा। सुसमाचार शांति में बाधा नहीं डालता, सुसमाचार जीवन में शांति उत्पन्न करता है। लेकिन क्या दोष थे यहाँ पर, वही चीज को हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी, लेकिन फिर वही चीज रिपीट कर जा रही है। चार बातें। पहली बात यह है कि ये मनुष्य वास्तव में उपद्रव है। कौन है ये पौलुस, जो है ये पौलुस के लिए ये उपद्रव है, ये उपद्रव मचा रहा है, ठीक है। पहली बात, संसार भर के सारे यहूदियों में फूट डाल रहा है, संसार के सारे यहूदियों में। क्यों ये कह रहा है, पिछली बार भी हमने देखा था इस पर दोष लगाया जाता था कि ये व्यवस्था को मानने के लिए इनकार करा, जबकि पौलुस ने व्यवस्था को मानने से इनकार नहीं किया था, कभी नहीं किया, और पिछली बार देख चुके थे। पौलुस ने कहा था कि व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, पौलुस ने कहा था व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, पौलुस ने कहा था कि व्यवस्था के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं है, और तब पौलुस ने कहा था प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यहाँ पर संसार में मनुष्य बनकर आया। उसका सुसमाचार स्पष्ट संदेश था जो उसने यीशु के बारे में बार बार कहा, हर बार आज भी हम देखेंगे। तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि यहूदियों में फूट डाले, अरे कुछ लोग यहूदी लोग यीशु को मान रहे हैं, कुछ लोग व्यवस्था को मान रहे हैं, और जो व्यवस्था को मान रहे हैं जो यहूदी, इनके बीच में फूट पड़े। देखिए कितनी चतुराई से ये वकील बात कर रहा है, और वकील का काम नहीं है। तब आगे चल कर देखो, यहूदी और नासरियों के कुपंथ का नेता, नासरियों के कुपंथ का नेता। अब पंथ की बात पिछली बार हमने देखी थी कि पंथ का मतलब क्या है, 6 बार प्रेरित काम की पुस्तक में पंथ शब्द इस्तेमाल हुआ, पिछली बार मैंने समझाया था। सच है इंग्लिश में वे आया, द वे। तो इस मार्ग है, वो मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग जीवन और सत्य है। उनका एक अंत था, ये नासरी कह रहा है, नासरियों के कुपंथ मतलब वो पंथ, वो मार्ग जो नासरियों द्वारा था, नासरी निवासी द्वारा। कौन है नासरी निवासी, प्रभु यीशु मसीह, वो नासरत का, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद वो नासरत में है, वहां पाला पड़ा गया और उसको नासरी के नाम से पुकारा गया, यीशु नासरी। तो वो कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये उस नासरी के कुपंथ का है, वो कुपंथ उसको उस पंथ के साथ कु लगा रहा है, अर्थात बुरा पंथ, दोषित कर, गलत, उसको गलत है कुपंथ, जो लोगों को भ्रष्ट कर रहा है, जो लोगों को बर्बाद कर रहा है, जो लोगों को विभाजित कर रहा है, उस पंथ का कह रहा है, उस पंथ को लेकर के उसका ये नेता है। पौलुस कौन है, उसका लीडर है, नेता। पौलुस सचमुच में एक आत्मिक लीडर है, आत्मिक नेता है, लेकिन उस कुपंथ का नहीं है। वो सच है कि नासरी यीशु नासरी साथ उस समाचार को लेकर आया जो यीशु नासरी नासरत में के आगे बढ़ा और पला, सही बात है। लेकिन जो कु शब्द है वो गलत शब्द है, वो सुपंथ है, वो अच्छा पंथ, वो ऐसा मार्ग है जो लोगों को जीवन में ले जाता है, यही आज भी हम देख रहे हैं, यही भी आज हम देख रहे हैं, ठीक है, जो आज परिस्थिति में हम देख रहे हैं वो ये चीज। तो ये क्या कह रहा है, पहला दर्ज कि लोगों में फूट डलवा रहा है, पदरी है, दूसरी बात फूट डलवा रहा है, तीसरी बात वो कुपद का नेता है, और तब वो कह रहा है चौथी बात, यहां तक कि इसने मंदिर को भी भ्रष्ट करना चाहे, मंदिर को भी भ्रष्ट करना चाहे। ये मंदिर को कैसे मंदिर भ्रष्ट होता था उस समय यहूदी लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया उनको आजादी थी क्यों मंदिर में जा सकते, लेकिन कोई भी अन्य जाति उस मंदिर में नहीं जा सकता था। अगर कोई अन्य जाति उस मंदिर में जाता तो वो उनके पास अधिकार था कि उसको मारा जाए। लेकिन क्या हो रहा था, उसमें पौलुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो सुसमाचार प्रचार करते समय जो यहूदी थे वो भी विश्वास कर रहे थे, वो भी सुसमाचार को सुन रहे थे, वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे, और अन्य जाति लोग भी जो जिनको इन लोगों ने तिरस्कारा हुआ था, खास से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहूदी पद को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन उन वो भी विश्वास करके विश्वास में आते, ये उनको वो ले जा रहा है मंदिर में। लेकिन अब क्या है, अब तो वो विश्वास ही बन चुके हैं, अब तो प्रभु को जान गए, उन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया है, उन्होंने सुसमाचार को स्वीकार करके मेरे बाद यीशु मसीह को स्वीकार किया। लेकिन इनकी दृष्टि में ये क्या कह रहे हैं कि ये मंदिर को भ्रष्ट कर रहा है, उनको ले जाकर पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, और सुसमाचार प्रचार करते हुए लोग विश्वास करते, चाहे वो यहूदी पृष्ठभूमि के हों, चाहे वो अन्य जाति पृष्ठभूमि के, और अन्य जाति पृष्ठभूमि से बहुत सारे लोग थे जो यूनानी पृष्ठभूमि के थे, यूनानी पृष्ठभूमि के, और ये यूनानी पृष्ठभूमि में ये लोग वो लोग थे जिन्होंने वहां पर रहते हुए बहुत सरलता से यहूदी भाषा थी उनको सीख लिया था, उनमें ये ज्ञानवान लोग थे, जो यूनानी लोग थे ज्ञानवान थे, और इसीलिए रोमी शासन में भी बहुत सारे ऐसे यूनानी थे जो उनके राजकाज को संभालने के लिए उनको अधिकार दिया जाता था। लेकिन ये क्या, तो चार ये दोष हैं, चार दोष हैं। पहला दोष क्या है कि मनुष्य वास्तव में उपद्रव है, ये उपद्रव मचा रहा, ये ही कर रहा। तब उसके बाद संसार पर क्यों, उनको जैसे ही मालूम चला अरे पौलुस आ गया है, जैसे ही यरूशलेम में मालूम चला इन लोगों को, यहूदियों को, ये फरीसी और शास्त्री को मालूम चल गया कि पौलुस आ गया, तो उन्होंने कहा इससे पहले कि कुछ और हो हम इस पर दोष लगा के इसको बंदी गृह में डलवा दें। वो पौलुस के विरोध में नहीं थे, लेकिन पौलुस के पीछे स्वास्थ्य ये है वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे, जिसका वो सेवक था, जिसका वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। मेरे प्रियो, लोग आज आप मेरे और आपके विरोध में रहते, वो जो हमारा विरोध करते हैं सुसमाचार का, वो सुसमाचार के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम इस बात को कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई और दूसरा उद्धार करता नहीं है, आप जब तक सबको साथ लेके चलेंगे, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ सब में एक यीशु मसीह, ये भी प्रभु यीशु मसीह, उनको साथ मिलाए, तब तक कोई परेशानी नहीं। जब तक आप इस सबको लेके 50 है एक और जोड़ लीजिए जुड़ जाए, तब तक कोई परेशानी है। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र पापों का क्षमा देने वाला, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र हमें जीवन प्रदान करने वाला, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है जो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वही एकमात्र प्रभु है, उसी के सामने सबको झुकना है, तब उस दिन से विरोध विद्रोह शुरू हो जाएगा। मैं अक्सर एक बात को बोलता हूं, जब आप के पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप निकलते हैं, भाई आप कहाँ जा रहे हैं, मैं फलानी जगह मजार पे जा रहा हूँ, आज चादर चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, अच्छा अच्छा लोग मेरे तरफ से भी 500 रुपए ले जाओ, वहां से मेरे नाम से भी चढ़ा दो। आप कहाँ जा रहे हैं, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, कहीं भी आप जाना चाहेंगे आपको लोग मना नहीं करेंगे, चाहे मंदिर में जाए, मजार में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं भी जाए। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे, पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, मैं चर्च जाता हूँ, लोग इसलिए इसको समझदारी समझेगा, अब उसको ना समझे के साथ इस्तेमाल मत करिएगा किसी से। अभी पिछले दिनों में एक भाई पुलिस विभाग के हैं, और वो प्रभु के बहुत अच्छे उन्होंने विश्वास किया और बहुत ही समझ, लेकिन उन्होंने कहीं जाकर के किसी दुकान में कुछ ऐसी बात बोली, दुकान वाले ने हमारे एक भाई से कहा कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, मैं चर्च का बहुत आदर करता हूँ, मैं आप लोगों का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन इनको कितना साथ मत लेते। तो हमें समझना है किस समय कैसी बात बोलना, तो जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, समझाने ही बता रहा हूँ, उसको बाहर जाकर कैसे उपयोग करना है, आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। सो मैं कह रहा हूँ जैसी आप, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप यहाँ जाते हैं शैतान जानता है कि अहंकार में, जब आप वहां जाते हैं तो शैतान जानता है अहंकार में, जब वहां जाते हैं शैतान जानता है अहंकार में, जब वहां जाते हैं शैतान जानता है अहंकार में। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे, जैसे आप बाइबल पढ़ने लगे, तब वो बौखला जाता, अरे ये तो अब मेरे हृदय से निकल जाए, तब वो बौखला जाता, अब तब वहां पर विरोध हुआ। ये सच्चाई अनुभव के साथ परिवारों में, घर में, भाई बंधुओं में, सबके इसी। और मेरे प्रियो, जिस दिन आप विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ खड़े हो, मैं एक नामधारी मसीह परिवार से प्रभु में आया हूं, बालक में मेरा बैप्टिज्म किया गया, मैंने माता पिता को नहीं किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने करा था घर वालों का, लेकिन जब मैं होश में आया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और जैसे ही मैंने बपतिस्मे की बात करी और अपने घर के जो संबंध थे उनके साथ बांटा, एकदम से विरोध में हो गया, मुझे हर कदम में विरोध का सामना हो। जब मेरा विवाह हुआ, उनकी कुछ और इच्छा थी, मैंने उनके अनुसार नहीं करा, मेरे विरोध में हो गए, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई नहीं। जब मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हुआ, वो विरोध में हुए, उन्होंने कहा पगला गया है, सड़क पे खंजड़ी बजाएगा, ढपली बजाएगा, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन प्रभु साथ और प्रभु के लोग साथ, प्रभु साथ था, प्रभु के लोग साथ। मेरे प्रिय, सच्चाई पौलुस को ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा है, लेखनी में इतना वर्णन नहीं है, लेकिन हम उन परिस्थितियों को देखते हैं, ये सरल नहीं था। जब पौलुस खड़ा हुआ है, लोग उस पर, महाजग भी खड़ा हुआ है, सब कुछ है उस पर, ये उसने क्या, तब आगे चलते। तो पहले भाग में हम देखते हैं किस प्रकार से चारों चीजों को हमने देख लिया कि ये बलवा कराना नहीं, ऐसा नहीं है, उसने बलवा कुछ नहीं बलवा कराना। तब आगे चल करके दूसरे भाग में जब हम आते हैं तो क्या होता है, ये सारी बातों को हमने देखा। एक पद और पढ़ूंगा, छह पद को पूरा करूंगा। यहां तक कि इसने मंदिर को भ्रष्ट करना चाहा और हम, तब हमने इसे बंदी बना लिया, हम इसका न्याय अपनी व्यवस्था के अनुसार करना चाहते हैं। परंतु सेनापति लिसियाओ ने आकर उसे बलपूर्वक हमारे हाथों से छीन लिया। क्यों छीन लिया? इसलिए छीन लिया क्योंकि उनको जरूरी था, शासन रोमी शासन है, जब तक रोमी शासन अलाव नहीं करेगा, अनुमति नहीं देगा, यहूदी उस पर निर्णय नहीं ले सकेंगे। यह यीशु मसीह के साथ हुआ। रोमी शासन में पिलातुस ने, जो उस समय रोमी राज का शासक था, उसने जब अनुमति दी तब यहूदियों ने निर्णय लिया। तो ये उस समय की परिस्थिति, ये नियम था, ये तरीका था कि कोई भी यहूदी अपने किसी को अपने आप दोषी करा करके न्याय नहीं दे सकता था। हाँ, महाजक उसके बारे में बता सकता था, लेकिन जब ये निर्णय ले लेते थे तब उसके बाद उसको यहूदियों के हाथ में करते थे, तब वो उसके साथ जो करना करना, लेना करना, धन लेना करना। तो यहाँ पर उन्होंने उसको ऐसे नहीं दिया, लेकिन तब आके चल के अब पौलुस का समय आता। तब हम 10 पद से लेकर 21 पद तक पौलुस के द्वारा, पौलुस अपनी स्थिति का वर्णन करता है, स्पष्टीकरण, क्या स्पष्टीकरण है पौलुस का। तब कहता है, जब राजपाल ने पौलुस को बोलने के संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्यायाधीश है, हर्ष से अपने बचाव में बोलता हूं, तो स्वयं इस सच्चाई का पता लगाओ। कहता पौलुस, कहता है ठीक है, मैं हर्ष के साथ अपने बचाव में बोल रहा हूं। क्या बोला अपने बचाव में? पहली बात, तू स्वयं इस सच्चाई का पता लगा सकता है कि मुझे आराधना के लिए यरूशलेम में केवल 12 दिन हुए हैं। तू स्वयं सच्चाई का पता लगा सकता है। मेरे प्रियो, ये सच है, कोई भी बात के लिए पहले सच्चाई का पता लगाना अनिवार्य है मेरे और आपके जीवन। बहुत गंभीर है, पौलुस दृढ़ता से कह रहा है, जो वचन हम सीखते हैं, एक एक वचन, उन वचनों को हमें समझना, परमेश्वर का वचन हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। कई बार हमारा जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन, कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, लेकिन कान तो यही है, देखा नहीं कान, और उसी के कारण हम बहुत बार बहक जाते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है तू सच्चाई का पता लगा सकता है, मुझे आराधना के लिए यरूशलेम के लिए 12 दिन हुए, अभी तो मैं 12 ही दिन हुआ यहाँ पर आया, इससे पहले तो मैं बाहर था, मैंने तो अभी थोड़े समय आके यरूशलेम में क्या कुछ करा देख ले तू। इन्होंने मुझे ना तो मंदिर में, ना आराधनालय में, और ना ही नगर में किसी से वाद विवाद करते अथवा दंगा करवाते पाया है।
इन्होंने नहीं पाया। भैया वकील तुम बता रहे हो, तुम्हारे पास जो गवाह है क्या तुमने पाया है, क्या तुमने देखा है, क्या तुमने सुना है, क्या तुमने जाना है? उनके साथ जब वो कह रहे देख लीजिए, वो कल जो खड़ा के बुद्धपुर ला रहा है, आप जानते हैं वकालत के बारे में है ना भैया? इनके साथ ही गवाह है, इन्होंने पूछे इनसे क्या इन्होंने देखा है, क्या इन्होंने जाना, 12 दिन में मैंने क्या करा है, कौन सा स्थान था जब मैंने बलवा किया, कौन स्थान था जो मैंने ऐसी बात करी है? जो 4 दोष मेरे पर लगाए जा रहे हैं, इस दोष को क्या ये जानते हैं या और कोई है जो मेरे लिए गवाही दे सकता है, बोल सकता है? तब आगे चल के क्या कहता है 13 पद, अब ना ही ये अभियोग को जो मुझ पर लगाते हैं तेरे सामने प्रमाणित कर सकते हैं। पहली बात सच्चाई, दूसरी बात किसी बात को प्रमाणित कर सकते है ना। पौलुस कह रहा ये क्या प्रमाणित कर सकते हैं, कोई भी बात बिना प्रमाण के, बिना प्रमाण करे हम उसके निर्णय में हमें नहीं पहुंच। बड़ी दृढ़ता से बोला, पर मैंने, अब देखिए पौलुस अब क्या कह रहा, पर मैंने तेरे सामने मान लेता हूं, क्या मान ले रहा है, अब वो वास्तविकता पे आ रहा है, वो इनकार नहीं कर रहा, सुसमाचार प्रचार से इनकार नहीं कर रहा, वो डर नहीं रहा, उसके अंदर याद है, उसके अंदर विश्वास है, उसके अंदर निश्चयता है, उसके अंदर दृढ़ता है, वो परमेश्वर के लिए खड़ा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पर मैं तेरे सामने ये मान लेता हूं कि जिस पंथ को ये कूप पंथ कहते हैं उसी के अनुसार मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की सेवा करता हूं। जिसको ये कूप पंथ कह रहे हैं वो ये नासी से कूप पंथ निकल कर आया, कह रहा मैं उसी को अपने पूर्वजों को, कैसे पूर्वजों, ये पूर्वज जो मेरे से पहले थे, मेरे से पहले मेरे जो बाप दादा और चले आ रहे, कहां ले आ रहा, वो व्यवस्था में ले आ रहा है, पुराने नियम में ले आ रहा है, पुराने लोगों में ले आ रहा है, कैसे ले आ रहा है, आगे तक देख, वो कह रहा है उन्हीं को, वो कह रहा है मैं उन्हीं पूर्वजों की परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था के अनुकूल और जो कुछ नबियों की पुस्तक में लिखा है उन पर विश्वास करता हूं। क्या व्यवस्था में यह नहीं दिया गया था कि आने वाले दिन में एक नबी आएगा जो मूसा के समान और मूसा से बढ़कर होगा, जो लोगों के लिए किस प्रकार से अपने आप को बलिदान करेगा, व्यवस्था विवरण पुस्तक लिखे प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट है, पुराने नियम में, पुराने व्यवस्था में, पुराने वचन में, सारी चीज में कह रहा है, नबियों की पुस्तक में जो भविष्यता में, क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी नहीं की गई? जब हम आने वाले उसमें आएंगे हम देखेंगे क्रिसमस के समय में कितनी भविष्यवाणी थी जो पहले से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के, नई बात नहीं थी। भजन का दाऊद अपने भजनों में यीशु के जन्म के बारे में कितनी भविष्यवाणी करता है, पहले शैमल में किस प्रकार से भविष्य लगा पड़ा है, तो कह रहा है मैं तो उनको मान रहा हूं जो आरंभ से जिसको मेरे पूर्वजों ने और कहा है या नबियों ने कहा है, और तुम जिसको कूपन कह रहे हो, भैया वो यीशु नासरी तो था जिसके बारे में कहा गया था कि प्रभु यीशु मसीह, वो यीशु इस संसार में मनुष्य बनकर आएगा, वो मेरे और आपके लिए मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करेगा, और जब वो पापों के लिए मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाएगा तो वो कीमती लहू होगा, वो बहुमूल्य लहू होगा, वो एकमात्र लहू होगा जो मनुष्य के पापों को शुद्ध क्षमा कर सकेगा, बैल बच्चे जानवरों पशुओं किसी और का लहू मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये यीशु नासरी है जिसका लहू के द्वारा मुझे और आपको क्षमा मिलेगी। और पौलुस कहता है उसी का मैं प्रचार कर रहा हूं, उसने ना नहीं किया परंतु उस बात को स्पष्ट किया। मेरे प्रियो कह रहा है, कह रहा है मैं क्या करता हूं, उन सब पर विश्वास करता हूं। पहली बात विश्वास, मैं परमेश्वर के वचन पर पूर्णता विश्वास करता हूं, चाहे वो नबियों के द्वारा लिखे गए हो, चाहे वो व्यवस्था में लिखे गए हो, जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचनों को लिखवाया है। और इसीलिए पहले तीमोथियुस में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। और तब कहता है, और बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, पौलुस कह रहा है, और मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तो उद्धार पाने के लिए बुद्धि देता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार, धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की प्रेरणा से द्वारा लिखा गया है, चाहे वो नबियों के वचन हो, वो लिखे गए हैं और उनसे क्या हो रहा है, वो लिख रहा है उद्धार को प्राप्त करना है। उसके बाद कहता है शिक्षा तारणा सुधार, तारणा तंबी सुधार, धार्मिकता के शिक्षा के लिए उपयोग है। क्यों? ताकि जिसे परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले काम के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। पौलुस ने कहा यह वचन वो वचन है जो परमेश्वर ने आराम से अपनी योजना में लिखा और मैं उन पर विश्वास करता हूं। मेरे प्यो, हमने भी, मैंने और आपने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार को प्राप्त किया। कोई आपके जीवन में था जिसने उस वचन को बो दिया, कोई मेरे जीवन में था जिसने मेरे जीवन में वचन को बो दिया। मेरे जीवन में वचन किसी ने और बोया, बोने वाला कोई और, सींचा किसी और ने, सींचा को ना काटने वाला कोई और, काटा कोई और, मुझे इस योग बनाया कि मैं आपके बीच में सेवा कर सकूं। मैं उन सारी पुस्तक को याद करूं। परमेश्वर का वचन, पौलुस वचन की दृढ़ता को, स्थिरता को कर रहा है। उस वचन पर पहली बात मैं विश्वास करता हूं। दूसरी बात 15 पद में, मैं परमेश्वर में आशा रखता हूं। मैं परमेश्वर में आशा रखता हूं। क्या आशा है? हमारा जीवन परमेश्वर पे आशा रखने वाला जीवन है। संसार का हर एक व्यक्ति उसके पास आशा नहीं है। मरने के बाद क्या होगा, कहां जाएगा? अरे जैसा होगा तो ठीक है, अच्छे काम करेंगे अच्छे हो जाएंगे, बुरे काम करेंगे कुछ कट जाएंगे, कुछ हो जाएगा, वो जाने हम नहीं जानते, वो जाने। नहीं, एक विश्वासी के लिए आशा निश्चित है। एक प्रभु के द्वारा बचाए गए जन के लिए आशा निश्चित है। और क्या आशा है उसका वर्णन करता है पहला योना, उसका तीसरा अध्याय में। कितने सुंदर रीति से यहाँ पर योना कह रहा है, ये हमारी एक आशा है जिस आशा में होकर के हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तीसरा अध्याय दूसरे पद को, हे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि उसको ठीक वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। ये हमारी आशा, एक दिन प्रकट होगा। उसने कहा है मैं जा रहा हूं, और जाते जाते जो जा रहा था सबको उठाया जाता है। स्वर्गदूत ने कहा कि ये लोगों देखो, जैसे वो तुम्हारे सामने उठाया गया एक दिन पुनः दोबारा आएगा। और मेरे प्रियो, एक विश्वासियों के लिए आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो कहता है मैं आशा रखता हूं। क्या आशा रखता हूं? आगे चल के कहता है आशा रखता हूं जैसे ये स्वयं भी रखते हैं कि निश्चय धर्मी और अधर्मी दोनों का प्रोत्थान होगा। क्यों प्रोत्थान होगा? दोनों का प्रोत्थान होगा, धर्मी और अधर्मी दोनों जी उठेंगे, और दोनों का प्रोत्थान के बाद दोनों का न्याय होगा। धर्मी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ धार्मिकता को प्राप्त किया है, वो अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे, जो पहला यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय में पढ़ा, उसको देखेंगे जैसा अनंत काल तक। कितना सुंदर स्थान होगा स्वर्ग, एक ऐसी सुंदर जगह जिसमें रहता है प्रभु मेरा। जब हम उस गीत को गाते हैं कितना सुंदर वो गीत की कल्पना कीजिए, एक ऐसा सुंदर स्थान है। मेरे को इस पृथ्वी पे कष्ट है, क्लेश है, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर स्थान के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया। यहाँ तरह तरह की बीमारियां हैं, शगल है, संघर्ष है, आसान नहीं है इस पृथ्वी पर रहना, लेकिन मेरे प्रिय 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल की यात्रा जो शायद दर्द भरी यात्रा होगी, जो शायद पीड़ादायक याद होगी, जो कष्ट में होगी, क्लेश में होगी, आंसू साथ होगी, लेकिन एक दिन आएगा तब मेरा प्रभु मेरे और आपके सारे आंसू को पोंछ देगा और वो चैन मिलेगा, वो सुख मिलेगा जो संसार में। ये मेरे और आपकी धन्यवाद, ये सच है। विश्वासी होने के नाते कितना संघर्ष करना पड़ता है, कई बार कठिनाइयों, कई सारी बातें जो रोज हमें सहनी पड़ती है, आपको सहनी पड़ती है, आसान नहीं है, पर तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन नित्य बना रखे। लेकिन हम उस आशा में उसको दे रहे हैं कि एक दिन परमेश्वर आएगा और वो मेरा और आपका, हम जी उठेंगे, धर्मी अधर्मी दोनों जी उठेंगे, परमेश्वर न्याय करेगा, और जो अधर्मी है वो अनंत काल के दंड के लिए, लेकिन जो धर्मी उसके द्वारा धर्मी बनाए हैं अनंत काल के जीवन के लिए और उसके साथ वास कर। कितनी बड़ी आशा है। और पौलुस कह रहा है मैं विश्वास करता हूं उस वचन पर और मैं ये भी जानता हूं, वो कह रहा है कि इसके बाद आगे तब आगे चल के और कहता है 16 पद में, इसलिए मैं भी परमेश्वर के तथा मनुष्य के समक्ष अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखने का सदा प्रयास करता हूं। इसलिए किस लिए? क्योंकि मेरे पास एक धन्य आशा है। इसलिए तुम ठीक है, तुम मेरे पर दोष लगा रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो तुम बलवा मचाने वाले हो, तुम मुझे कह तुम ये कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो तुम ऐसा करो, कूपन का प्रचार करो, ठीक है कोई बात नहीं तुम कर रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है एक दिन वो आएगा जब प्रभु मेरे साथ ऐसा करेगा। और लेकिन मैं स्मृति पर रहते हुए वो कहता है अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखने का सदा प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास यही है कि मेरा विवेक निरंतर निर्दोष बना रहा। पिछली बार भी हम उस विवेक के बारे में बात देख रहे थे जो 23 अध्याय में पहले पद में, खरे विवेक के बारे में, और हमने विवेक और हृदय के बारे में तुलनात्मक देखा था। हृदय का मतलब क्या है, विवेक का मतलब विवेक को बना के रखना। कई बार विवेक भी दूषित हो जाता है, कई बार विवेक भी निर्बल हो जाता है, कई बार विवेक भी गड़बड़ हो जाता है। मैंने पिछली बार बताया था 30 नए नियम में रेफरेंसेस हैं, पद हैं जो विवेक के बारे में अलग अलग स्थानों पर आया था। लेकिन मेरे को पॉलस कितना कहता है, पॉलस कहता है मैंने अपने विवेक को बनाया, और क्या विवेक को निर्दोष बनाए रखने का मैं प्रयत्न करता हूं, प्रयास करता हूं। मेरे प्रियो ये मेरा और आपका कर्तव्य है। मेरे और आपके पास धन्य आशा है कि एक दिन आएगा प्रभु के साथ हम राज करेंगे, लेकिन इस पृथ्वी जब तक प्रभु ने मुझे और आपको बनाए रखा है, मुझे और आपको अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है, चाहे जितनी कीमत चुकानी। तो वो कह रहा है अब आगे चल के बताता है, जब बहुत वर्षों के पश्चात में अपनी जाति के लोगों द्वारा दान देकर भेंट चढ़ाने आया था। अब उसने क्या करा, पूरी यात्रा में उसने पौलुस ने धन एकत्रित किया था। कई लोग कहते हैं कि चर्च को कोई भी सामाजिक सेवा में शामिल नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं गलत, वो बाइबल का अधूरा प्रचार है। बाइबल में शुरू से देखिए, हाँ प्राथमिकता हमारी क्या है, इस बात को देखिए, प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रकट करना, उसको जी आत्मा को बचा के उसके राज में लाना और कलीसिया प्राथमिकता करना। लेकिन बाइबल बार बार अनुवाद वो कह रहा है इतने जगह, क्या कह रहा है, उसने बहुत जगह जा करके धन इकट्ठा किया था। कह रहा है जब इन्होंने मुझे मंदिर में पाया तो मैं विधेय पूर्ण शुद्ध होकर बिना भीड़ भाड़ या दंगा किए इस काम में लगा हुआ था, परंतु वहां एशिया के कुछ यहूदी थे जिन यदि उनके पास मेरे विरुद्ध अभियोग लगाने को कुछ होता तो उन्हें चाहिए था कि वे तेरे सामने यहाँ उपस्थित होकर अभियोग लगाते, वो आते। मैं तो भैया वहां गया था, मैंने धन जमा करा, कुछ लोगों के लिए भेड़ चराने की गया, उसने लोगों के बिहाफ में वो वहां पर दान अर्पित करने के लिए गया था। उसने पौलुस ने बहुत जगह धन जमा करके कई कलीसिया की, यरूशलेम की कलीसिया की बहुत सहायता की थी। जब आप फिलिपी कलीसिया को देखेंगे, जब आप थिस्सलुनी कलीसिया को देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो बार बार इन बातों को देखते हैं कि उन्होंने अपने भेंटों के द्वारा पौलुस की सहायता की थी और कलीसिया को बढ़ाने के लिए ये करा था। तो ये है, यदि उनके पास ऐसा कुछ अभियोग होता तो लगा, अन्यथा ये लोग स्वयं ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ पर कौन सा अपराध पाया, केवल इस बात को छोड़ जिसे मैंने उनके बीच में खड़े होकर जोर से कहा, मरे हुए का जी उठने के विषय में तुम्हारे सामने मेरा न्याय हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था सचमुच लोग मर गए हैं, वे जी उठेंगे, और ये संदेश ये वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर से आराम से दिए गए। पुनरुत्थान के बारे में उसने बात कर दी, पुनरुत्थान कल पिछली बार देख रहे थे कि दो मतों में सदी के और फरसे में आपस में मन मिटाव हो गया था, क्योंकि एक समूह मानता था पुनरुत्थान है, दूसरा समूह मानता था पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन पौलुस कहता पुनरुत्थान है, मैंने इस बात को कहा है और उसे मैं अंगीकार और उसे मैं आलंग में। जब यह सब कुछ उसने अपनी सफाई दे दी तब क्या हुआ, आगे चलते अब 22 पद से लेकर 27 पद तक। अब यहां पर तीसरे करने हम फेलिक्स की प्रति उत्तर देते। अब फेलिक्स भी क्या सोचा, देख लीजिए यह हाकिम है, शासक है, ध्यान दीजिएगा। परंतु फेलिक्स ने जो इस पंथ की ठीक ठाक जानकारी रखता था सुनवाई स्थगित करने को कहा। वो अच्छी रीति से इस पंथ का मतलब यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, जो नासरी पंथ को बोल रहे हैं उसके बारे में ठीक ठाक जानकारी, उसे बार बार सुना था, जाना था, लिखता था जब सेनापति लियोस आएगा तब मैं इस मुकदमे को निर्णय लूंगा। मुकदमा कर दिया। तब उसने सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट देकर हिरास में रखा जाए और उसके मित्रों से किसी को भी उसकी सेवा करने को ना रोका जाए। अब 2 साल तक पौलुस को रहना पड़ा था आगे चलकर। कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रिसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, ये कौन है? फेलिक्स कौन है? रोमी है। ये कौन है? पत्नी है, यहूदी है। वो जानती थी, दोनों में आपस में बातचीत होती, दोनों एक दूसरे मत बांटते थे, सब कुछ है। ये बुला करके क्या कहा? आकर के और पौलुस को बुलवा, उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु में है सुना। अब मसीह यीशु का विश्वास, अब पौलुस को मौका मिल गया कि और भी उनको मालूम चले कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि दोनों अलग अलग मत थे और दोनों ने इन बात, और पौलुस ने यीशु मसीह कौन है स्पष्ट सुना। आप देखिए, जब वो धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर क्या, अब उसके अंदर भय उत्पन्न। सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार कई बार लोगों के लिए भय भी उत्पन्न करता है, आशा भी उत्पन्न करता है, निराशा को भी दूर करता है, लेकिन सच्चा सुसमाचार भय उत्पन्न करता है। वो है न्याय का, वो है नरक का, वो है परमेश्वर के दंड, और ये आना जरूरी है। हम धन्यवादित हैं, हम आनंदित हैं, लेकिन हम नरक के प्रति सचेत हैं, भयभीत हैं, न्याय के प्रति सचेत हैं, भयभीत हैं, धन के प्रति सचेत हैं, भयभीत हैं। ये हमारी जीवन। और तब क्या कहा उसने? कह रहा है, इस समय तू जा, समय मिलने पर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। साथ ही साथ वो पौलुस से रुपए पाने की आशा भी करता था, अतः वो उसे बार बार बुलाकर उससे वार्तालाप किया करता। अब सोच रही, कौन है ये? हाकिम है, बहुत बड़ा शासक है, लेकिन चाह क्या रहा है? घूस। फेलिक्स, उसके पास किसी चीज की कमी है? धन की कमी नहीं, सब कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर संतुष्टि, फिर भी वो उससे आता है कि पौलुस कुछ पैसा दे देगा, मैं उसको छोड़ दूंगा। क्या पौलुस ने पैसा दिया? क्या पौलुस ने घूस दी? आज भी अभी जो केस आज जो आया नहीं, कितने लोग इस काम को करेंगे? कितने पुलिस वाले करेंगे? कितने लोग करेंगे? मेरे पे सच, हम अलग नहीं है, हम अलग नहीं, बल्कि ये सारी चीज हमें और भी जागृत करके हमारे विश्वास को बढ़ाती है, हमें तैयार कर दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के वचन में है ये, और इसलिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। और तब उसके बाद जब 2 वर्ष बीत गए तो फेलिक्स के स्थान पर प्रोकुरस फेस्तुस की नियुक्ति, करीब 8 साल तक इसने राज्यपाल की जिम्मेदारी को निभाया है, पर उस पद पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को प्रश्न करने की इच्छा से पौलुस को हिरासत में ही छोड़ दिया। इसको प्रश्न करने की इच्छा से, उधर पिलातुस ने यहूदियों को प्रश्न करने की इच्छा अर्जुन ने अपने हाथ धो लिए और यीशु को ठीक है तुम ले जाओ। वो जान रहा है कि इस पर कोई भी किसी भी प्रकार से इस पर अभियोग मिलता यीशु मसीह पर, जान रहा था पिलातुस, ये भी जान रहा है कि इसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, लेकिन यहां पर भी वही चीज दिखाई देती, अरे यहूदी नाराज ना हो जाए, क्योंकि यहूदी के बीच में हुआ है, उनको भी प्रश्न, और लेकिन अब उसको ऐसी छोड़। मेरे प्रियो, ये हम पौलुस के जीवन को देखें, 25-26-27 अध्याय जो है वो फिर से इसी तरह की साक्षियों का अध्याय है। 21 अध्याय तक हम देखते हैं किस प्रकार से कलीसिया का, लेकिन जैसे ही 21 अध्याय में आते हैं तब हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस के द्वारा गवाही शुरू हो जाती है, और हमने देखी थी गवाही के बाद, और अंत तक पौलुस हर साक्षियों के सामने खड़े होकर कैसी परिस्थिति में सुसमाचार सुना रहा है, हकीमों को, शासकों को, अभी तक लोगों को सुनाया है, अभी तक लोगों को सुना है, अब हकीमों को सुना रहा है। मेरे प्रियो, हमें सचमुच में इस बात को देखना है। लेकिन एक बात है, पौलुस किसी भी प्रकार से उसने याद नहीं छोड़ा, एक बात कहता खरे विवेक से, दूसरी बात कहता निर्दोष विवेक से। मुझे और आपको आज ये सोचना है कि जो हम अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, क्या हमने अपने विवेक को खरा और निर्दोष बनाकर रखा है? पौलुस के विश्वास को देखकर फेलिक्स झुक तो गया, लेकिन फेलिक्स ने समझौता किया और पौलुस उससे निडर। पौलुस प्रभु के लिए अपने जीवन को बलिदान दे, मेरे प्रभु मैं कहना चाहता हूं, जब आज ये नया बिल पास हुआ है, ऐसी परिस्थिति में कल मुझे और आपसे कोई बात करो तो हम क्या करें, आप किस प्रकार से तैयार, गांव में जब जाएंगे अगर लोग आपके पास आए आप किस प्रकार से तैयार, अरे हम तो नहीं चाहते थे, हमें तो ऐसे कर दिया, या आपके अंदर उदारता वो याद है क्योंकि आपके पास एक विश्वास है, क्योंकि आपके पास एक आशा है, क्योंकि आपके पास एक निश्चयता है, आपके पास वो है जो संसार के पास नहीं है, संसार के पास नहीं है, संसार के पास धन दौलत हो सकती है, रोटी कपड़ा मकान हो सकता है, प्रभु ने मुझे और आपको अपने जीवन को काटने के लिए वो भी दिया और देता है, शायद बहुत धनी ना हो लेकिन प्रभु मुझे आपको भूखे नहीं सोने देता, मेरी आपकी चिंता करता है, परंतु सबसे बढ़कर के क्या वो विश्वास बना हुआ है, क्या वो धन्य आशा बनी हुई है, क्या वो दृढ़ता बनी हुई है, वो हम एक दिन जाएंगे उस राज में राज करेंगे, ये पृथ्वी का क्लेश थोड़े समय का होगा लेकिन उस अनंत सुख में हम भागेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो एकमात्र परमेश्वर जिसने मेरे आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, मेरे लिए कीमत चुकाई, आपके लिए कीमत चुकाई है, उसने दुख सहा, यातना सही, पीड़ा सही है, क्रूस पर वो मारा गया है, ओ मेरे प्रिय क्रूस पर उसने मेरे आपके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई जो संसार की कोई चीज नहीं चुका सकती थी, उसने चुकाई है और उसने उस कीमत चुका करके मुझे और आपको मोल लिया, चूंकि उसने मुझे और आपको मोल लिया है अब मैं और आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, चूंकि मैं और आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है इसलिए उसकी धन्य आशा मेरे और आपके लिए अनंत की आशा, मेरे प्रभु सहायता करें ताकि हम विश्वास में अपना जीवन, आइए हम